श्री गुरु के पद चिन्हों पर चलना, वैष्णव सेवा के सुयोग को कभी नहीं छोड़ना। गुरु महाराज ने वृंदावनस्थ श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में विग्रह प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 3 दिन के उत्सव का आयोजन किया। उत्सव में 3 दिन पर्यंत उत्तम प्रसाद की व्यवस्था की गई। प्रथम दिवस आमंत्रित समस्त वैष्णव के लिए, द्वितीय दिवस वैष्णव के साथ ब्रज के समस्त पंडागण एवं उनके परिजनों के लिए तथा तृतीय दिवस युगल रूप से समस्त वैष्णवों, पंडागण एवं साधारण समस्त लोगों के लिए। गुरु महाराज ने इस उत्सव पर लगभग 20,000 रुपये से भी अधिक व्यय किया। उन दिनों 1 रुपये में 2.5 किलो आटा मिलता था। उस समय हमारे मठ में रसोई घर तक भी नहीं बना था। टीन की छत वाले एक अस्थाई कक्ष में रसोई बनती थी। मठ की इस अवस्था को लक्ष्य कर किसी ने गुरु महाराज से कहा, आपने जितना पैसा इस उत्सव में व्यय किया है उसमें तो हमारे 8 कमरे बन जाते। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, कमरे बनाने के लिए योगदान देने वाले बाद में इतने लोग मिल जाएंगे कि आपके पास स्थान का अभाव पड़ जाएगा, किंतु आज जिन श्रेष्ठ वैष्णव की एक साथ एक ही स्थान पर सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ है, बाद में वैसा सुयोग पुनः नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने इसी चित्तवृत्ति के साथ जड़सा, गुवाहाटी, कोलकाता, पुरी आदि अनेक स्थानों पर समस्त वैष्णव को आमंत्रित कर विशाल उत्सवों का आयोजन किया। वैष्णव सेवा के सुयोग का संपूर्ण लाभ उठाना। मेरे शिक्षा गुरु श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के अप्रकट होने के पश्चात श्री गौड़ीय वेदांत समिति के तत्कालीन आचार्य श्री भक्ति वेदांत वामन महाराज के दिशा निर्देश से मथुरा स्थित श्री केशव जी गौड़ीय मठ के मठ अध्यक्ष श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज ने गुरु महाराज के निकट एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, श्री गौड़ीय वेदांत समिति की ओर से हम लोग ब्रज दर्शन के वृंदावन में पड़ाव के समय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में संपूर्ण पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम लोग उसी के अनुसार अपनी व्यवस्था करें। उनके पत्र के उत्तर में गुरु महाराज ने लिखवाया, हमारी ओर से कोई निषेध नहीं है। आपका संग लाभ करके हम अत्यधिक आनंदित ही होंगे, किंतु हमारी एक शर्त है कि यहाँ पर वास करते समय आप लोग रंधन करने में स्वतंत्र नहीं होंगे, अलग से कुछ भी नहीं बना पाएंगे। हमारे मठ के सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग जो ग्रहण करते हैं आप लोगों को भी वही स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आपको हमारी शर्त स्वीकार हो तो फिर आप अपनी सुविधा अनुसार कार्यक्रम बना सकते हैं। गुरु महाराज ने हम लोगों से कहा, देखो वैष्णव ने कृपा करके हमें अपनी सेवा का सुयोग प्रदान किया है, सेवा का सुअवसर आया है, इसका संपूर्ण लाभ उठाना। भविष्य में हो सकता है कि उनका वृंदावन में अपना ही कोई स्थान हो जाए, तब फिर वे हमारे यहाँ रहने क्यों आएंगे। गुरु महाराज के अप्रकट होने के कुछ वर्षों के पश्चात मेरे गुरु भ्राता श्री भक्ति प्रपन्न तपस्वी महाराज प्रायः 10 भक्तों के साथ हरिद्वार गए और वहाँ पर कनखल हरिद्वार स्थित श्री गौड़ीय वेदांत समिति के शाखा मठ में ठहरे। वहाँ पर मठ के मठ अध्यक्ष ने श्री तपस्वी महाराज को अलग से रसोई बनाने की प्रार्थना की। श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज जो उस समय वहीं पर थे ने जब श्री भक्ति प्रपन्न तपस्वी महाराज को साथ लाए 10 लोगों की अलग से रसोई बनाते हुए देखा तो उन्होंने मठ अध्यक्ष को डांट लगाते हुए गुरु महाराज के साथ हुए पत्र के आदान प्रदान के विषय में बात सुनाई कि श्री माधव गोस्वामी महाराज ने हमारे अनेक यात्रियों के लिए अनेक दिनों तक अत्यधिक सुष्ठु रूप से समस्त व्यवस्था की थी और तुम लोग केवल 2 दिन के लिए, वह भी केवल 10 लोगों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर वहाँ के मठ अध्यक्ष ने श्री तपस्वी महाराज को अलग से रसोई बनाने के लिए निषेध किया तथा सभी के लिए एक साथ में प्रसाद की व्यवस्था की गई। मुझे इस घटना के विषय में तब पता चला जब श्री तपस्वी महाराज ने मुझे बताया। उस समय मैंने श्री तपस्वी महाराज से कहा कि ये वैष्णव का एक गुण है, कि वे अपने गुरुवर्गों के आचरण और शिक्षाओं का स्मरण रखते हैं तथा उनका पालन करते हैं एवं उनका संपूर्ण हृदय से आभार प्रकट करते हैं। हृदय में अभाव ही वैष्णव सेवा का बाधक। श्रील भक्ति विचार यावर गोस्वामी महाराज के चरण आश्रित श्री सत्यव्रत प्रभु हमारे किराए के स्थान पर स्थित श्री चैतन्य गौड़िया मठ कोलकाता में उस समय वास करने की अभिलाषा लेकर आए। जिन दिनों हमारे पास मठ में निवास करने वाले भक्तों के लिए चावल 2 या फिर 3 बार बनाना पड़ता था, कारण चावल बनाने का पात्र ही छोटा था, बड़ा बर्तन खरीदने तक का सामर्थ्य नहीं था। इसी कारण एक ब्रह्मचारी ने गुरु महाराज से कहा, हम तो पहले से ही यहाँ पर बहुत लोग हैं, हमें ही रहने में कितनी असुविधाएं होती हैं, तब फिर इन्हें कैसे समायोजित करेंगे। गुरु महाराज ने उत्तर दिया, इनकी तो कोई मांग नहीं है, हम जहाँ रहेंगे ये भी वहीं रह जाएंगे, कोई अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी और जैसा हम खाएंगे वह भी वही खाएंगे। वैष्णव को भजन करने में सहायता करना हमारा कर्तव्य है। वैष्णव के रहने से कोई अभाव नहीं होता, केवल हमारे हृदय में अभाव नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी अभाव हमारी वैष्णव सेवा में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। एक बार दक्षिण भारत के 3 भिन्न भिन्न वैष्णव परस्पर की गुणावली को श्रवण कर एक दूसरे से श्री रंगनाथ के उत्सव में मिलने की आशा लेकर अपने अपने स्थान से श्री रंग क्षेत्र की ओर चल दिए। मार्ग में अत्यधिक तूफान, घनघोर वर्षा आदि के होने के कारण उनमें से एक वैष्णव ने अपनी रक्षा हेतु वन में खंडर जैसी एक छोटी सी कुटिया में आश्रय लिया। क्रांति के कारण वे जिस किसी प्रकार से उस छोटे से स्थान पर लेट गए, थोड़ी देर में अनेक वैष्णव ने उस स्थान के द्वार को खटखटाते हुए कहा, कौन महापुरुष अंदर हैं, कृपा कुछ देर के लिए भीतर आश्रय दे दें। अंदर से वैष्णव ने द्वार खोला और उन्हें भीतर आने के लिए कहा, किंतु बाहर खड़े वैष्णव ने कहा, आप तो स्वयं ही बहुत कष्ट से इस स्थान पर लेट सकते हैं, मेरे भीतर आने से आपको बहुत असुविधा होगी, मैं कोई अन्य व्यवस्था कर लेता हूँ। किंतु भीतर स्थित वैष्णव ने कहा, यद्यपि यह स्थान हम दोनों के लेटने के लिए छोटा है, तथापि यह स्थान हमारे बैठने के लिए पर्याप्त है, हम दोनों बैठकर भी रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं, अतएव बिना किसी संकोच के भीतर आकर मुझे कृतार्थ कीजिए। बाहर खड़े वैष्णव ने प्रस्ताव स्वीकार किया और भीतर आकर छोटे से स्थान में बैठ गए। अब जब वे दोनों बैठकर कुछ भगवत चर्चा में प्रवृत्त हुए ही थे कि अनेक वैष्णव ने द्वार को खटखटाया तथा भीतर प्रवेश हेतु निवेदन किया। जब द्वार खुला तो भीतर की अवस्था देखकर वे अंदर जाने हेतु संकोच करने लगे। उनके मन की भावना को भाप कर भीतर के वैष्णव ने कहा, जब हम 2 लोग बैठकर सारी रात्रि व्यतीत कर सकते हैं तो फिर 3 लोग खड़े होकर क्यों नहीं व्यतीत कर सकते, आप भीतर आइए, हम भगवत चर्चा करेंगे। इस प्रकार उन 3 लोग ने हृदय में अभाव नहीं होने के कारण सुखपूर्वक भगवत चर्चा में ही रात्रि व्यतीत की तथा परस्पर का परिचय जानकर कि वे एक दूसरे से मिलने के लिए ही श्री रंग क्षेत्र जा रहे थे, उनके आनंद की सीमा नहीं रही। आप लोग को यह प्रसंग सदैव स्मरण रखना चाहिए। इसी प्रकार इस गौड़िया मठ के तूफान, घनघोर वर्षा आदि के समय में जिस किसी प्रकार से श्री सत्यव्रत प्रभु को समायोजित करके कुछ समय व्यतीत कर लो, समय सर्वदा एक जैसा नहीं रहता, बाद में इसी संघ का स्मरण करके तुम स्वयं को सौभाग्यवान समझोगे तथा बाहर की असुविधाओं को भी अनदेखा कर ऐसे संघ की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करोगे। निष्पक्षता का निर्दर्शन। एक बार श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज के एक शिष्य ने हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ में वास करने की अभिलाषा व्यक्त की। मैंने गुरु महाराज से जब इस विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, जो कोई भी मठ में वास की इच्छा करे, आकर रहना चाहे, उनके भजन में सहायता करना ही हमारा कर्तव्य है, आगे से कभी भी इस विषय में कोई जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ, एक बात है कि यदि कोई अन्य किसी मठ से आ रहा है तो उनके गुरुदेव अथवा उनकी अनुपस्थिति में मठ के अध्यक्ष से परामर्श लेकर ही उन्हें मठ में रखना। गुरु महाराज के दिशा निर्देश के अनुसार मैं श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज के निकट गया तथा उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, आपका अमुक शिष्य हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की कोलकाता शाखा में रहना चाहता है, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम उन्हें रख सकते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, कोई आपत्ति नहीं, आप लोग उसे रख लो। कुछ समय के पश्चात जब श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज के वृंदावनस्थ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पर डकैत लोगों ने आक्रमण किया, तब उन्होंने मठ की सुरक्षा हेतु उस शिष्य को, जो कि साहसी बलवान व्यक्ति था, पुनः अपने पास भेजने हेतु लिखा। तब गुरु महाराज ने उनके शिष्य को गुरु सेवा, गुरु निष्ठा, गुरु मुख पद्म वाक्य पालन करने आदि की महिमा सुना समझाकर उसके कोलकाता से वृंदावन जाने की सुव्यवस्था कर दी। यात्रियों के लिए स्नेहमय चिंता। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा के समय गुरु महाराज हमें समस्त यात्रियों के रहने तथा प्रसाद आदि की सुव्यवस्था करने के लिए बहुत प्रकार के उपदेश प्रदान करते थे। वैष्णव का सुख विधान, उनकी सेवा करने का उपदेश प्रदान करते तथा स्वयं भी आचरण करके सभी को हतप्रभ कर देते। एक समय जब हम नंदग्राम में थे तब रात्रि के समय घनघोर वर्षा होने लगी। सभी लोग निश्चिंत होकर अपने अपने कक्ष में शयन कर रहे थे, किंतु गुरु महाराज धर्मशाला की छत पर गिर रहे वर्षा के शब्द को सुनकर शीघ्र अपने बिस्तर से उठे तथा उन्होंने मुझे नींद से उठाकर कहा, जाओ नीचे वाले तंबू को देखकर आओ, कहीं उसमें जल तो नहीं आ गया। मैंने गुरु महाराज को निश्चिंत करने के उद्देश्य से कहा, नीचे वाले तंबू के चारों ओर जमीन के ऊपर इतनी ऊंची मिट्टी की मेड़ बना दी है कि जल भीतर आ ही नहीं सकता। किंतु मेरी बात सुनकर भी गुरु महाराज निश्चिंत नहीं हुए तथा उन्होंने मुझसे कहा, तब भी एक बार नीचे जाकर देखकर आने पर ही मैं सो पाऊंगा। गुरु महाराज की बात सुनकर मैं उठा, नीचे गया, सब निरीक्षण किया, आकर गुरु महाराज को बताया, सब ठीक है, यात्री प्रायः शयन कर रहे हैं, जल की एक बूंद भी भीतर नहीं आई है। दोहारी परत वाला जल रोधक तंबू होने के कारण ऊपर से जल के आने का तो प्रश्न ही नहीं, अतएव आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। गुरु महाराज ने तब मुझसे कहा, तुम ऊपर छत पर लगे तंबू को भी देख लेते तो अच्छा होता। गुरु महाराज की बात सुनकर मैं चिंतित हो गया कि ऊपर वाले उस तंबू के भीतर में कैसे जाऊंगा, उसमें तो केवल महिलाएं ही शयन कर रही हैं, गुरु महाराज की बात का भी उल्लंघन कैसे करूं। कुछ समझ नहीं आने पर भी मैं गुरु महाराज की टॉर्च लेकर ऊपर की ओर चल पड़ा। मुझे सीढ़ियों में ही अपने सतीर्थ श्री विष्णुदास, श्री भक्ति वैभव अरण्य महाराज मिल गए तथा उन्होंने स्वयं ही मुझे बतलाना प्रारंभ किया, ऊपर सब ठीक है, जल बिल्कुल भी अंदर नहीं आया, सब सुरक्षित है। मैंने जब गुरु महाराज को ऊपर के तंबू का संवाद दिया तभी वे निश्चिंत दिखलाई पड़े तथा उन्होंने मुझसे कहा, तुमने अन्य लोगों से जिज्ञासा की? मैंने कहा, हाँ, मैं विष्णु प्रभु से सब कुछ सुनकर ही आ रहा हूँ। तब गुरु महाराज निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर लेट गए तथा भगवान की असीम कृपा, उनके भक्त वात्सल्य और अपने दायित्व के विषय में विशेष रूप से वर्णन करने लगे तथा उनकी सहायता करने वाले भक्तों का धन्यवाद ज्ञापन करने लगे। व्यवसायिक बुद्धि से वैष्णव सेवा नहीं होती। गुरु महाराज जब ग्वालपाड़ा असम में रहकर नित्य प्रति हरि कथा कीर्तन आदि का परिवेशन करते थे तब पहाड़ों पर रहने वाले कुछ भक्त लोग लगभग 20 किलोमीटर साइकिल चलाकर कथा कीर्तन श्रवण करने के लिए आते थे। एक दिन कथा के समय मूसलाधार वर्षा होने लगी। कथा कीर्तन के समाप्त होने पर भी वर्षा बंद नहीं हुई। गुरु महाराज ने मुझे तथा श्री माधवानंद प्रभु को बुलाकर कहा, जाओ इन भक्तों के आज रात्रि यहीं पर रहने की तथा प्रसाद आदि की सुव्यवस्था कर दो। ये लोग इतने अधिक श्रद्धा लेकर बहुत दूर से आते हैं, हमें भी अवसर के उपस्थित होने पर इनकी सेवा करनी चाहिए। इनका हरि कथा कीर्तन के लिए यहाँ आना जाना वास्तव में धाम परिक्रमा से अभिन्न है। जिस प्रकार प्रणयी भक्तों के साथ धाम में जाने पर वहाँ उनके श्रीमुख से निस्सृत हरि कथा कीर्तन के श्रवण से ही धाम परिक्रमा का फल होता है, अन्यथा नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस किसी स्थान पर शुद्ध भक्त वास करते हैं वह स्थान वृंदावन से अभिन्न कहलाता है। वहाँ पर आने जाने वाले भक्तों की धाम परिक्रमा करने वाले यात्रियों की भांति ही सेवा करनी चाहिए। ऐसी सेवा निष्कपट हृदय से होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कमर्शल, ये व्यवसायिक नहीं होनी चाहिए। धाम परिक्रमा करने वाले यात्रियों की सेवा वास्तव में श्री शिवानंद सेन के अनुगत में सेवा करना है। श्री शिवानंद सेन बंगाल से श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु पूरी जाने वाले भक्तों की वार्षिक यात्रा के समय सेवा करते थे। श्री शिवानंद सेन यात्रियों की सुविधा हेतु जिस प्रकार उनके भजन साधन के अनुकूल समस्त वस्तुओं को उन्हें देकर लाभवान हुए थे, हम भी उन्हीं की भांति वैष्णव की सेवा करके अर्थात उन्हें देकर लाभवान होंगे, उनसे उसके विनिमय में कुछ लेकर नहीं। जब लाभ के लिए ही सभी जगतवासी कुछ करते हैं तो फिर हम अपने लाभ की चिंता क्यों नहीं करेंगे। यदि कोई श्री शिवानंद सेन की भांति यात्रियों की निष्कपट रूप से सेवा करता है तो उसे उन्हीं की भांति अवश्य ही श्री नित्यम प्रभु की कृपा की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज के वचनों को श्रवण कर हमारा हृदय परम आनंद से नृत्य करने की उन्मत्त दिव्य अभिलाषा से ओतप्रोत हो गया। हृदय में इस परम आनंद के साथ हमने उत्साहपूर्वक यात्रियों के ठहरने तथा प्रसाद की संपूर्ण सुव्यवस्था कर दी। सर्वोत्तम आदर्श चरित्र। एक बार जब हम उत्तर भारत दर्शन के लिए गए थे तब शिल भक्ति संबंध अकिंचन गोस्वामी महाराज ने परामर्श दिया था कि यदि हम डाकोर उज्जैन आदि नहीं जाएं, तो 1000 किलोमीटर नहीं जाने से हमारा बहुत पैसा बच जाएगा तथा वह मठ की सेवाओं में लग सकेगा। उनकी बात सुनकर गुरु महाराज ने उनसे अंग्रेजी भाषा में कहा था, माई प्रिंसिपल इज टू हेल्प एंड सर्व द डिवोटीज, नॉट टू सेव मनी। मैं यात्रियों को अपने साथ उनकी सेवा करने के उद्देश्य से लाया हूँ, ना कि उनसे कुछ लाभ लेने के लिए। दूसरा, ये भक्त लोग हम पर संपूर्ण रूप से विश्वास करके तथा हम पर निर्भर होने का अभिनय करते हुए हमारे साथ आए हैं। ये जीवन में एक या दो बार ही यहाँ आएंगे, अतः इन्हें ठगना उचित नहीं है। प्रसाद प्रवेशन की सर्वोत्तम विधि। एक समय गुरु महाराज ने श्री चैतन्य गौड़िया मठ गोकुल में बहुत विशाल उत्सव का आयोजन किया। उस समय गोकुल के समस्त पंडाओं को भी निमंत्रण दिया गया था। उन दिनों पंडे लोग शौकर ब्राह्मण के हाथ के अतिरिक्त अन्य किसी के हाथ से स्पर्श प्रसाद को ग्रहण नहीं करते थे। इसी कारण उन्हें प्रसाद प्रवेशन के समय गुरु महाराज अपने शौक ब्राह्मण आश्रयजनों के कुलगत नाम तथा उनके गोत्र इत्यादि का उच्चारण कर उन्हें पुकारते थे, जिससे कि पंडे लोग स्वतः ही जान जाएं कि उन्हें शौक ब्राह्मण ही परिवेशन कर रहे हैं। गुरु महाराज ने मुझे ओ नरोत्तम चक्रवर्ती कहकर अपने निकट बुलाकर कहा, तुम सभी को बेसन के लड्डुओं का परिवेशन करो। जब मैं लड्डू परिवेशन कर रहा था तब गुरु महाराज ने श्री सोहन लाल पंडे की ओर इंगित करके मुझे अपने हाथ की मुद्रा के द्वारा दिखलाया कि तुम्हारे दोनों हाथों में एक हाथ जितने लड्डू उठाए जा सकें उतने ही लड्डू एक बार में उनकी पत्तल में डाल दो। मैंने सोचा, यद्यपि गुरु महाराज ने बिना गिने लड्डू देने के लिए कहा है, तथापि देखो तो सही ये कितने लड्डू खा सकते हैं। इसलिए मैंने एक बार में 20 लड्डू गिन कर दिए। मेरे देखते देखते उन्होंने 20 लड्डू अनायास ही खा लिए। गुरु महाराज ने पुनः इंगित करके कहा, बिना कुछ पूछे पुनः वैसे ही लड्डू दे दो। मैंने पूर्व की भांति गिनकर 20 लड्डू ही दिए। उन्होंने भी एक एक करके सब खा लिए। गुरु महाराज अत्यंत आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए उन्हें खाते देखते रहे तथा मुझे इंगित से और देने के लिए कहते रहे। श्री सोहन लाल जी लड्डू के बीच बीच में कचौड़ी, पूड़ी तथा बूंदी के मट्ठे का भी सेवन कर रहे थे। जब श्री सोहन लाल जी ने 80 लड्डू खा लिए तब उन्होंने मुझे और नहीं देने के लिए कहा। उस समय गुरु महाराज के बरामदे तथा उनके कमरे में भी प्रसाद परिवेशन हो रहा था। मैं दोनों स्थानों पर ही परिवेशन कर रहा था। मैं जब दूसरे स्थान पर परिवेशन करने के लिए गया तब श्री सोनलाल जी झट से अपना पत्तल उठाकर कूड़ेदान में फेंकने के लिए वहां से चले गए। यह देखकर कि सोहनलाल पंडा को स्वयं अपना पत्तल फेंकना पड़ा, गुरु महाराज अत्यंत रुष्ट होकर कहने लगे, क्या मठ में कोई भी नहीं है? श्री सोहनलाल जी हमारी सब सुकृति लेकर चला गया। सब साधारण लोग भी अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि देव सदृश होता है का पालन करते हैं, तब फिर निमंत्रित व्यक्ति को क्या मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, इसका तुम स्वयं विचार करो। क्या वे स्वयं पत्तल उठाएंगे? गुरु महाराज की बात सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गया। गुरु महाराज ने मुझे भयभीत देखकर कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम तो 2-3 स्थानों पर प्रवेशन कर रहे हो, किंतु अन्य लोग क्या कर रहे हैं? निमंत्रित व्यक्ति को ठीक से मर्यादा नहीं देने पर निमंत्रण करने वाले व्यक्ति को दोष लगता है, सेवकों को नहीं। गुरु महाराज ने बाद में सब सेवकों को कहा, जो व्यक्ति जितना खाकर संतुष्ट होता है उसे उतना स्वयं ही परिवेशन करना चाहिए, जिससे कि उसे पुनः पुनः मांगने हेतु संकोच नहीं करना पड़े, उसे पुनः पुनः मांगकर लज्जित ना होना पड़े। सभी की रुचि को जानने के लिए उनके पत्तल को ध्यान से देखते रहना तथा उसी के अनुरूप परिवेशन करना ही वास्तविक रूप में उत्तम परिवेशन रूपी सेवा है। जिसकी जिसमें अभिरुचि है उसमें कोई आघात नहीं करना चाहिए, उसी में उनकी सेवा करनी चाहिए। सेवा अथवा परिवेशन उनके संपूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात उनकी पत्तल आदि को भी स्वयं उठाकर ले जाने पर ही पूर्ण होती है। गुरु महाराज की समस्त लोगों को सब प्रकार से संतुष्ट करने की अद्भुत अभिलाषा थी। दान देने से कोई हानि नहीं होती। ब्रजमंडल परिक्रमा के समय जिस जिस स्थान पर कैंप लगता था, गुरु महाराज वहां वहां पर वास करने वाले पंडों के घर पर जितने सदस्य हैं उसके अनुसार उनके घर पर सीधा कच्चे चावल, दाल, आटा, सब्जी, चीनी इत्यादि भेजते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे गुरु भ्राता श्री भक्ति प्रसाद पुरी महाराज पंडे लोगों को सीधा देने में आनाकानी करते थे, किंतु गुरु महाराज सीधा भेजे बिना किसी प्रकार से मानेंगे नहीं। गुरु महाराज श्री पुरी महाराज को कहते थे, बीज जितना अच्छा बोओगे फसल उतनी अच्छी उगेगी, इसलिए अच्छा किसान अच्छे बीज को उचित समय पर बोता है। बीज को भूमि में बोने से कभी कोई हानि नहीं होती, बल्कि वह एक बीज अन्य अनेक बीजों को स्वयं से उत्पन्न करके बीज बोने वाले को उपहार स्वरूप प्रदान करता है, इसलिए किसी को कुछ देने से कभी कमी नहीं पड़ती। जो हमारे लिए होगा वह सदैव हमारे पास रहेगा। मैंने अपनी बाल्यावस्था में एक कहानी सुनी थी, उसे थोड़ा ध्यान से सुनो। एक बार एक ज्योतिष ने एक व्यक्ति से कहा, तुम्हारे भाग्य में सदैव 125 रुपया है, ना तो तुम्हारे पास कभी उससे कम होगा और ना ही उससे अधिक। जिस व्यक्ति को ज्योतिष ने यह बात कही उसका स्वभाव सदैव दान करने का था। उसके पास जो कुछ भी आता वे उसे दान देता ही रहता, किंतु तब भी उसके पास 125 रुपया बचा ही रहता। एक दिन जब उसकी ज्योतिष से भेंट हुई तब उसने ज्योतिषी से कहा, आपने तो कहा था मेरे भाग्य में केवल 125 रुपया है, किंतु मैं देख रहा हूँ कि मैंने 100 रुपये अन्य लोगों में बांट दिए। उसकी बात सुनकर ज्योतिषी ने उसे कहा, भाई तुमने जो अन्य लोगों को दिया है वे अपने भाग्य का नहीं बल्कि उन्हीं के भाग्य का उनको दिया है। तुम इच्छा करने पर भी अपने भाग्य का अन्य किसी को नहीं दे पाओगे। इसलिए जिसे जो देना संभव पर हो उसे देते हुए चले जाना। तुम्हारे भाग्य में उसके कारण कुछ भी कम नहीं पड़ेगा। वह केवल तुम्हारे माध्यम से अपने भाग्य में लिखी वस्तु को ही लेगा। गुरु महाराज की इस बात का श्री भक्ति प्रसाद पूरी महाराज पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे भी संपूर्ण जीवन फंडे आदि सभी की यथासंभव सेवा करते रहते। एक उत्सव की वास्तविक सफलता का निर्धारण। जब भी किसी स्थान पर उत्सव होता था, गुरु महाराज उसे केवल सन्यासी ब्रह्मचारी का नहीं बल्कि मठ के प्रत्येक प्राणी के उत्सव के रूप में आयोजित करते थे। उन्होंने हमें निर्देश प्रदान किया हुआ था कि यद्यपि ठाकुर जी के लिए प्रतिदिन फूल मालाएं आती हैं, तथापि उत्सव के दिन विशेष फूलों की मालाएं आनी चाहिए। वस्त्र तो वे नित्य प्रति धारण करते हैं, उत्सव के दिन विशेष वस्त्र आभूषण आदि धारण करेंगे। मुरली वंशी आदि भी उत्सव के दिन विशेष होनी चाहिए। गैया को प्रतिदिन जो दिया जाता है उत्सव के दिन भी वही भोजन नहीं बल्कि उनका भोजन भी उत्तम होना चाहिए। मठ में कार्य करने वाले मजदूर मिस्त्री अथवा अन्य कर्मचारियों यथा दरबान आदि के लिए भी विशेष वस्तुएं देनी होंगी, तभी उत्सव संपूर्ण होगा। ऐसा था गुरु महाराज का दृष्टिकोण प्रत्येक वस्तु के प्रति। सेवकों को उनके स्वभाव के अनुरूप सेवा में नियोजित करना। एक समय जब मैं गुरु महाराज के साथ मायापुर श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में निर्मित उनकी भजन कुटीर के समक्ष बैठा हुआ था, तब सभी गैयाएं वहां पर आकर उपस्थित हो गईं। उन्हें वहां आया देखकर गुरु महाराज ने जिज्ञासा की, ये सभी गैयाएं यहां पर आकर क्यों खड़ी हो गई हैं? मेरे गुरु भ्राता श्री भगवान दास ब्रह्मचारी श्री भक्ति निकेतन तुरे आश्रमी महाराज ने उत्तर दिया, नरोत्तम प्रभु के यहाँ पर होने के कारण। गुरु महाराज ने कहा, ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा, आजकल यही इन गायों की सेवा करते हैं। तब गुरु महाराज ने मुझसे कहा, गायों को कुछ खाने के लिए लाकर दो, अन्यथा मर्यादा की हानि होगी। मैंने निकट स्थित अमरूद के बगीचे से पके अमरूद लाकर उनके हाथ में दिए तथा गुरु महाराज ने स्वयं गायों के समक्ष अपने ऊँचे वाले बरामदे में अमरूद बिखेर दिए। गैयाँ बड़े ही प्रेम से अमरूद खाने लगीं तथा गुरु महाराज अत्यधिक प्रेम पूर्वक उन्हें देखते हुए मुस्कुराते रहे। बाद में गुरु महाराज ने मुझे अपनी जेब में से 10 रुपये निकाल कर दिए तथा कहा, जाओ एक मन अर्थात 40 किलोग्राम खल ले आओ और गैयाँ को खिला दो। मैंने जब ऐसा ही किया तब गुरु महाराज कृष्ण की ब्रज की गैयाओं उनके बछड़े उनके द्वारा की गई गैयाओं की सेवा की परिपाटी कृष्ण की गैयाओं के प्रति प्रीति आदि का विस्तार से वर्णन करके मुझे श्री राधा मदन मोहन की सेवा हेतु जीवन यापन करने वाली गैयाओं की सेवा में उत्साहित करने लगे। उन्हीं के द्वारा उत्साहित किए जाने के कारण मैं सभी गैयाओं बछड़ों आदि को प्रत्येक सप्ताह लाइफ बॉय साबुन से अच्छी तरह से स्नान कराता था। उनके खाने की रुचि की अनेक अनेक खाद्य सामग्रियों के द्वारा परीक्षा करके उनकी रुचि के अनुरूप ही भोजन देता। एक बार श्रील भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज ने हमारे मठ की गैयाओं के प्रसन्न वदन को देखकर मुझसे पूछा, इनकी सेवा कौन करता है? मैंने कहा, महाराज मैं करता हूँ। उन्होंने पुनः पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, नरोत्तम ब्रह्मचारी। उन्होंने कहा, ऐसा नाम बताने से नहीं चलेगा, अपने पूर्व आश्रम का नाम तथा कुल का नाम बताओ। मेरा पूर्व आश्रम का नाम नरोत्तम चक्रवर्ती था। जब मैंने अपना नाम नरोत्तम चक्रवर्ती बताया तब उन्होंने कहा, तुम ब्राह्मण कुल के हो इसलिए भली भांति सेवा कर रहे हो, अन्यथा मेरा एक आश्रित गायों की सेवाहीन भावना के कारण नहीं करता, कहता है मैं ब्रह्मचारी हूँ, ठाकुर जी की सेवा करूँगा, गायों की सेवा क्यों करूँ? जो हो माधव महाराज भली भांति जानते हैं कि किस व्यक्ति से क्या सेवा करवानी चाहिए। गायों के प्रति स्नेह। एक बार एक जज ने गुरु महाराज को कोलकाता में गाय दान दी तथा गुरु महाराज ने उस गाय को अपने गुरु भ्राता श्री उदाहरण प्रभु के माध्यम से श्री धाम मायापुर स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में भेज दिया। बाद में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गाय दिए जाने पर गुरु महाराज ने उसे भी श्री धाम मायापुर में भेज दिया। उसी वर्ष गुरु महाराज ने मेरे गुरु भ्राता श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, श्री भक्ति प्रसाद आश्रम महाराज, श्री भक्ति ललित गिरी महाराज इत्यादि को संन्यास प्रदान किया और संन्यास प्रदान करने के पश्चात उन्हें अपने साथ तीर्थ भ्रमण के लिए लेकर गए। पीछे से जो गवाला गायों की सेवा करता था उसने 8 रुपये के स्थान पर 16 रुपये मांगना प्रारंभ किया। मैंने श्री जगमोहन प्रभु के पास कोलकाता में पत्र भेजा और उन्हें कहा कि यदि गायों के लिए कोई सेवक आप यहाँ पर भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। किंतु उन्होंने मुझे पत्र लिखकर कहा, इस बार श्री राधा मदन मोहन जी तुम्हारे माध्यम से ही गायों की सेवा करवाना चाहते हैं। कारण मेरे पास कोलकाता से मायापुर भेजने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसी बीच गुरु महाराज ने मुझे पत्र के माध्यम से सूचित किया। मैंने स्वप्न में देखा गायें आकर मुझसे अभियोग अर्थात शिकायत कर रही हैं कि हमारी सेवा ठीक से नहीं हो रही। मैंने गुरु महाराज और श्री जगमोहन प्रभु के वक्तव्य को गुरु वैष्णव का आदेश जानकर कुछ समय तक गायों की अपनी योग्यता अनुसार जी जान से सेवा की। तब गुरु महाराज सीधा मायापुर में आए। उन्होंने गायों को आकर प्रणाम किया, माला पहनाई, उन्हें कुछ खाने के लिए दिया तथा जब मैंने पूछा कि गायें अभी भी आपसे आकर किसी प्रकार का अभियोग तो नहीं करती, तब गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ना अब कोई अभियोग नहीं करती। गुरु महाराज गायों को भी श्रेष्ठ कृष्ण सेवक के रूप में दर्शन करके उनकी सेवा होते देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। स्वयं को सभी का सेवक समझना। एक समय कोलकाता स्थित हमारे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के हाल निर्माण का अर्थ वहन करने वाले श्री गजानन तापड़िया जी की माता ने गुरु महाराज को कोलकाता में अनुपस्थित होने के कारण मेरे हाथ में एक लाल रंग की गाय और उसका सफ़ेद रंग का बछड़ा दान में दिया। मैंने गाय को कोलकाता मठ में ही रख लिया जहाँ पर अभी निर्माण का कार्य चल रहा था। जब गुरु महाराज अपना प्रचार सेवा कार्य करने के पश्चात कोलकाता राजबिहारी एवेन्यू में किराए के स्थान पर स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में आए तब गाय की बात सुनकर मुझसे पूछा, गाय की सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है किंतु कोलकाता जैसे शहर में हमारे छोटे से मठ में वे कैसे और कहाँ रहेगी। तब मैंने उत्तर दिया, जब लगभग 40 मठवासी मठ में रहेंगे तो फिर एक गाय के रहने का स्थान भी हो ही जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, यदि गाय को रख सको तब अति उत्तम। गाय के रहने से ठाकुर जी की सेवा के लिए तो शुद्ध दूध मिलेगा ही, साथ ही जब मेरे गुरु भ्राता आएंगे तब उनके लिए भी शुद्ध दूध की व्यवस्था हो जाएगी। गुरु महाराज ने तब भंडारी से पूछा, गाय प्रातः तथा संध्या में कितना दूध देती है। उसने उत्तर दिया, प्रातः काल 10 लीटर तथा संध्या के समय 5 लीटर। तब गुरु महाराज ने मुझसे पूछा, बछड़े को दूध भरपेट पीने देते हो तो या फिर उसे थोड़ा सा पीने देकर स्वयं अधिक दूध निकालते हो। मैंने उत्तर दिया, बछड़ा भरपेट दूध पीता है या नहीं ये तो मैं नहीं बतला सकता, कारण वह मुझे बतला नहीं सकता कि उसका पेट भरता है या नहीं। किंतु हाँ, उसका मुख उसका शरीर देखकर लगता है कि उसे कोई असुविधा नहीं है। मेरी बात सुनकर गुरु महाराज बहुत संतुष्ट हुए। अगले दिन गुरु महाराज प्रातःकाल ही गाय को देखने के लिए आ गए, उसका दर्शन किया, उसके शांत स्वभाव वाले बछड़े का भी दर्शन किया, गाय को साष्टांग प्रणाम किया, उसके तथा उसके बछड़े के गले में पुष्पों की माला पहनाई, भंडारी को बुलाकर कहा, मैं तो अप्रस्तुत अवस्था में आया हूँ, तुम अभी गंगूराम मारवाड़ी की दुकान पर जाकर सबसे अच्छे वाली संदेश मिठाई को ले आओ। जब भंडारी संदेश लेकर आया तब गुरु महाराज ने जाकर अपने हाथों से अत्यधिक आनंदपूर्वक गाय को संदेश खिलाया। बाद में गुरु महाराज ने गाय को क्या खिलाते हैं, उसके खाने का पात्र कहाँ है, दूध निकालने का पात्र कैसा है, इत्यादि सभी वस्तुओं की जानकारी ली तथा सब कुछ स्वयं देखा। लाल रंग की गाय तथा सफ़ेद रंग के उसके बछड़े की सुंदरता की अत्यंत प्रशंसा की। उसके पश्चात जब भी राजबिहारी एवेन्यू में कोई उत्सव होता तब गुरु महाराज वस्तुओं की सूची बनाते समय उस गाय तथा बछड़े के लिए भी विशेष विशेष वस्तुओं के विषय में अवश्य लिखते। केवल मात्र सेवा वृत्ति का ही सम्मान। श्रील प्रभुपाद के आश्रित श्री कृष्ण प्रेम दास बाबाजी महाराज मय मन सिंह मठ अर्थात वर्तमान बांग्लादेश के मठ रक्षक थे। परवर्ती काल में उन्होंने श्रीधाम मायापुर में भी एक आश्रम बनाया। एक बार जब वे मेदिनीपुर में प्रचार करने के उद्देश्य से गए थे तब कहीं पर फिसल कर गिर पड़ने से उनकी कमर की हड्डी टूट गई। चोट लगने के पश्चात वे सहायता की उपेक्षा से राजबिहारी एवेन्यू कोलकाता स्थित गुरु महाराज द्वारा किराए के स्थान पर प्रारंभ किए गए श्री चैतन्य गौड़े मठ पहुँचे। मैंने उन्हें शंभुनाथ पंडित अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ के एक चिकित्सक डॉक्टर ब्रह्म से मेरी अच्छी जान पहचान थी। मैंने उनके माध्यम से बाबा जी महाराज का एक्सरे आदि भी करवाया। बाद में उस अस्पताल से छुट्टी मिलने के पश्चात कुछ दिनों तक आयुर्वेदिक अष्टांग अस्पताल में भी रहे तथा उसके पश्चात मायापुर स्थित अपने आश्रम में चले गए। जब तक वे हमारे पास थे हमने यथासंभव उनकी भली भांति सेवा ही की। मायापुर आश्रम में वास के समय अत्यंत गर्वपूर्वक वे सर्वदा कहते थे, हम सिंह अर्थात श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की संतान हैं, हम किसी से भय नहीं करते। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि उन्होंने गुरु महाराज के प्रति भी आलोचनापूर्वक टिप्पणियां की थी। बाबा जी महाराज ने अपने मायापुर आश्रम स्थित खजूर के पेड़ों के रस निकालने के लिए एक श्रमिक को नियुक्त किया था। यह निश्चित हुआ था कि पारिश्रमिक के रूप में वह एकत्रित रस का आधा रस ले लेगा तथा बाकी आधा बाबा जी को देगा, किंतु वह व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का था तथा सारा रस स्वयं ही रख लेना चाहता था। वह बाबा जी से कहने लगा, तुम बाबा जी हो, तुम्हें रस की क्या आवश्यकता है। जब पुनः पुनः कहने पर भी उसने रस देने से मना कर दिया तो उन दोनों में झगड़ा हो गया तथा उस दुष्ट व्यक्ति ने श्री कृष्ण प्रेम बाबा जी मार लाठियों से प्रहार किया। बाबा जी महाराज को बहुत चोट आई। श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज के आश्रित श्री गौरदास प्रभु ने मेरे पास संवाद पहुंचाया, सिंह के बच्चे को सियाल ने मारा है, आप जाकर उनसे मिलो एवं यदि कोई सहायता कर सकते हो तो करो। मैं श्री कृष्ण प्रेम दास बाबा जी महाराज से जाकर मिला, सारा संवाद लिया, श्री गौरदास प्रभु को साथ लेकर थानेदार के पास गया तथा समाधान हेतु उन्हें बाबा जी के पास लेकर आया। बाद में मैंने उक्त घटना के विषय में पत्र के माध्यम से गुरु महाराज को भी अवगत कराया। गुरु महाराज ने मुझे पत्र लिखकर कहा, तुम श्री कृष्ण प्रेम दास बाबा जी महाराज की सेवा करना, उनकी जो भी आवश्यकता हो उसे मठ से लेकर पूर्ण कर देना। मैंने पुनः लिखकर भेजा, बाबा जी महाराज की कोलकाता में समस्त सेवा करने पर भी वे मायापुर में पहुंचते ही आपके प्रति बहुत अपशब्द व्यवहार करते हैं, खरी खोटी कहते हैं, कटु भाषा भी बोलते हैं। वास्तव में मेरी उनके प्रति श्रद्धा नहीं होने के कारण उनकी सेवा करने में कोई रुचि नहीं है। गुरु महाराज ने मुझे पुनः लिखकर भेजा, तुम श्री कृष्ण प्रेम बाबा जी महाराज की सेवा में कोई भूल मत करना, उनकी सेवा होने से मुझे प्रसन्नता होगी। मैंने लिखकर भेजा, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यथासंभव उनकी सेवा करूँगा एवं कोई भूल नहीं करूँगा, किंतु श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा कर पाना भी मेरे लिए संभवपर नहीं होगा। गुरु महाराज के आदेश अनुसार बाबा जी महाराज की मैंने बहुत सेवा की तथा अंततः वे स्वस्थ हो गए। कुछ समय के पश्चात उन्होंने गुरु महाराज को एक पत्र लिखकर कहा, यद्यपि मैं कटुभाषी हूँ तथा मैंने आपके शिष्यों को बहुत भला बुरा कहा, तब भी उन्होंने बहुत ही यत्नपूर्वक मेरी सेवा की। मैं अपने मायापुर स्थित आश्रम को आपको देना चाहता हूँ, आप कृपा उसे स्वीकार करें। उनके पत्र को मैंने गुरु महाराज को पढ़कर सुनाया तथा गुरु महाराज ने मुझसे उसका उत्तर लिखवाया। आपने अपने मायापुर स्थित आश्रम को मुझे देने के विषय में कहा है, किंतु मायापुर में तो हमारा पहले से ही अपना मठ है। मैं एक स्थान पर दो संस्थान नहीं चाहता। हमारे जिस गुरु भ्राता का मायापुर में स्थान नहीं है, आप अपना आश्रम उन्हें दे सकते हैं। दूसरा, आपकी सेवा हमने आपका आश्रम प्राप्त करने की इच्छा से नहीं की। वास्तव में आपके आश्रम के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं है। आप श्रील प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा विशिष्ट हैं। अपने इस गुण के कारण ही आप हमारे सेव्य हैं। पत्र लिखते लिखते मेरा हाथ रुक गया। मेरी आंखों में अश्रु भर आए। मेरे मन में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित शब्दों का स्मरण हो आया। प्रभु कहे भट्टाचार्य करह विचार, गुरु किंकर हय मान्य अपनार। चैतन्य चैतामित मध्य लीला 10.142। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, भट्टाचार्य कृपा इस बात पर विचार कीजिए, गुरु का सेवक तो सदैव पूजनीय होता है। अपने परम आराध्यतम गुरु महाराज के मुख से उस गुरु भ्राता की स्तुति सुनकर जिसने पूर्व में उनकी निंदा की थी, मुझे श्री कविराज गोस्वामी के उपरोक्त कथनों का यथार्थ अर्थ समझ में आया। उन वचनों का यथार्थ तात्पर्य स्फुरित हुआ। मुझे प्रतीत हुआ कि इससे पूर्व उसे पढ़ने पर भी मैंने उसके अर्थ को इस क्षण पर्यंत वास्तव में अनुभव नहीं किया था। यह वृत्तांत स्मरण कर एक अन्य बात मन में आती है कि गुरु महाराज का आदर्श कितना उन्नत था, कि कोई व्यक्ति उनके साथ कैसा भी प्रतिकूल व्यवहार क्यों ना करे, वे उसके अनुरूप प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं समझते थे। बल्कि श्रील प्रभुपाद के प्रति जो व्यक्ति श्रद्धा विशिष्ट होते थे, वे उन्हें आदरणीय एवं अपना परम सेव्य मानते थे। किंतु आजकल के वैष्णव समाज में प्राय इसका विपरीत आदर्श ही लक्षित होता है। यथा किसी ने गुरुदेव की अथवा गुरुवर की कितनी भी सेवा क्यों ना की हो, किंतु वर्तमान में यदि वह व्यक्ति मुझ में असंख्य कमियां होने पर भी मेरे प्रति कोई अनुकूल भाव पोषण नहीं करता, तो मैं उसकी सहायता क्यों करूं? उससे मेरा क्या संबंध है? वह तो अपराधी है, वह तो सेवा करने के योग्य ही नहीं है, इत्यादि। अपनी निंदा करने वाले व्यक्ति की भी सेवा करने का आदर्श। श्री गुरुदास बाबा जी महाराज नामक श्री प्रभुपाद के एक आश्रित भक्त थे, जो श्री चैतन्य मठ मायापुर में वास करते थे। जब गुरु महाराज श्री चैतन्य मठ की ओर से कोलकाता के निकटवर्ती नवाबगंज नामक एक शहर में प्रचार सेवा में व्यस्त थे, तब उन्होंने ही अति कुशलतापूर्वक गुरु महाराज के त्यागी शिष्यों से कहा था, तुम्हारे गुरुदेव ने संवाद भिजवाया है कि तुम लोग अपना सारा सामान लेकर उनके पास नवाबगंज चले जाओ। वहां उन्हें नगर संकीर्तन के लिए अनेक भक्तों की आवश्यकता है। बाद में वे वहीं से बहुत दिनों के लिए अन्य स्थानों पर प्रचार के उद्देश्य से जाएंगे एवं आप लोगों को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। उनकी उपरोक्त बातों को सुनकर श्री भगवान दास, श्री भक्ति निकेतन तुरे आश्रमी महाराज तथा पूज्यपाद श्री आश्रम महाराज सहित गुरु महाराज के अनेक त्यागी भक्त तुरंत मायापुर से गुरु महाराज के पास नवाबगंज पहुंच गए। उन्हें देखकर गुरु महाराज ने कहा, तुम लोग कैसे यहाँ आ गए? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं। कि तो उनसे सब संवाद सुनकर गुरु महाराज को श्री गुरुदास बाबा जी महाराज के वास्तविक उद्देश्य को समझने में कोई देर नहीं लगी। वहाँ पर भक्तों के आ जाने से नगर संकीर्तन आदि बहुत अच्छा ही हुआ। बाद में गुरु महाराज भक्तों को वहीं पर छोड़कर स्वयं कोलकाता चले गए। वहाँ उन्होंने किराए पर एक मकान की व्यवस्था की तथा नवाबगंज आए सभी भक्तों को कोलकाता में अपने निकट बुलाकर अपनी सेवा कार्य करने लगे। परवर्ती काल में वही श्री गुरुदास बाबा जी महाराज श्री चैतन्य मठ की पूरी स्थित शाखा श्री पुरुषोत्तम गौड़िया मठ में रहते थे। साथ ही वे अनेक भक्तों से यह भी कहते थे, मैं आजकल श्री चैतन्य मठ में वास करने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करता। इसी कारण वे अपनी परिणामी भी श्री भक्ति विलास गबस्त नेमी गोस्वामी महाराज के शिष्यों के पास ही रखते थे। एक बार श्री गुरुदास बाबा जी महाराज ने पुरी के जिला अस्पताल में अपनी आँखों का ऑपरेशन कराया तथा किसी भक्त के माध्यम से मुझे तथा प्रभुपाद आश्रित श्री भक्ति प्रपन्न दंडी गोस्वामी महाराज के पास संदेश भिजवाया कि हम उनसे भेंट करें। जब हम उनसे मिलने अस्पताल पहुँचे, उन्होंने मुझसे कहा, जब तक मैं अस्पताल में हूँ, मुझे अपनी देखभाल के लिए दिन में एक तथा रात्रि के लिए अन्य एक भक्त की आवश्यकता है, कृपा तुम उसकी व्यवस्था कर दो। मैंने अपने गुरु भ्राता श्री लखन प्रभु को उनकी दिन में तथा श्री यशोदा जीवन प्रभु को रात्रि की सेवा में नियुक्त किया। मैंने पत्र के माध्यम से गुरु महाराज को भी इस तथ्य से अवगत कराया। गुरु महाराज ने मेरे पत्र के उत्तर में लिखकर भेजा, तुम लोग उनकी सेवा कर रहे हो, ये जानकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। श्रील प्रभुपाद से संबंध युक्त होने के कारण श्री गुरुदास बाबा जी महाराज हमारे सेव्य हैं, उनके पत्थे की भी तुम अपने मठ से ही सब व्यवस्था कर देना। पूरी मठ की आर्थिक अवस्था से मैं भली भांति परिचित हूँ, अतएव शीघ्र ही तुम्हारे पास पैसे भिजवाऊँगा। गुरु महाराज की इच्छानुसार हमने अपने मठ से ही उनके पत्थे की तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की भी समस्त व्यवस्था की। जब श्री गुरुदास बाबा जी महाराज को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने श्री पुरुषोत्तम गौड़िया मठ में नहीं जाकर हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ में ही रहने की इच्छा व्यक्त की। हमने श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले धर्म सभा उत्सव में भाग लेने के लिए आने वाले श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज के उद्देश्य से मठ में एक संलग्न स्नान घर वाले नूतन कक्ष का निर्माण किया था। उस कक्ष में ही बाबा जी महाराज के रहने की व्यवस्था की गई। नेत्रों के ऑपरेशन के बाद वे उन दिनों काला चश्मा लगाते थे तथा स्पष्ट देख नहीं पाते थे। एक दिन मठ में प्रसाद ग्रहण करते समय उनका साक्षात्कार श्री भगवान दास श्री भक्ति निकेतन तुरे आश्रम में महाराज से हुआ, परंतु चश्मे के कारण वे उन्हें पहचान नहीं पाए तथा उनसे पूछा, तुम कौन हो? श्री भगवान दास ने उन्हें उत्तर दिया, मैं वही भगवान दास हूँ जिसे तुमने युक्तिपूर्वक शिवास अंगन से बाहर निकाला था। उनकी बात सुनकर श्री गुरुदास बाबा जी महाराज ने श्री भक्ति प्रपन्न दंडी महाराज से कहा, देखो ये ब्रह्मचारी कैसी कड़वी बात बोल रहा है, श्री माधव महाराज तो कभी भी ऐसा नहीं कहते। श्री भक्ति प्रपन्न दंडी महाराज ने उत्तर दिया, बाबा जी महाराज ये तो पूर्णतया सत्य है कि माधव महाराज कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, वे परम वैष्णव हैं, किंतु क्या भगवान दास मिथ्या बात बोल रहा है? माधव महाराज और इनकी भूमिका में तो पृथ्वी आकाश का अंतर है, अतएव उनके कथनों में भी ऐसा अंतर तो दिखाई देगा ही। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन लोगों ने गुरु महाराज का गुरुतर विरोध किया था, गुरु महाराज ने सेवा का सुयोग उपस्थित होने पर उनकी भी स्वयं सब प्रकार से सेवा की और शिष्यों को भी उनकी सेवा में नियुक्त किया।